हेलो, ओम ओम शांति। हम सब मिलकर के एक बार उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसे ब्रह्मा बाबा और सभी यज्ञवत्स यज्ञ के आदि में कहा करते थे, जैसा हम सब ने सुना है। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और दूसरा श्वास लेंगे उसे छोड़ते हुए शांति की ध्वनि। आज का जो विषय है समय, संकल्प व श्वास को सफल करना, उन सब का उत्तर इस एक ओम शांति के महामंत्र में ही आ जाता है। बाबा ने हमें अनेकों खजाने दिए हैं, सबको मालूम ही है ना, ये भी खजाने हैं जो आज के विषय में हैं, समय रूपी खजाना, संकल्प, श्वास, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, वाणी का खजाना, कर्म का खजाना। और इन सब का क्या है अंतिम स्वरूप? अगर ये सब खजाने हमारे पास हैं तो किस खजाने से इन सब खजानों का पता चलता है? कौन सा खजाना है? इन सब का सार है खुशी रूपी खजाना। अगर जीवन में खुशी है तो जैसे हम इन सब खजानों को भी प्राप्त करते जा रहे हैं, सफल करते जा रहे हैं। आज की मुरली में भी यही था, आज की मुरली सुनी ना सबने, तो उस मुरली में क्या और विशेष बात बाबा ने कही? आज की मुरली अव्यक्त मुरली, उसमें बाबा ने यही बताया कि हर एक के अपने अपने कर्मों की गति है, गुह्य गति। कोई मानो इतना संपन्न नहीं है आज, अपने को जैसे गरीब समझता है लौकिक रीति से, स्थूल धन के खजाना की कमी है, तो उसको क्या अनुभूति हमें करानी है, क्या अनुभव कराना है कि ये स्थूल धन भी खजाना है लेकिन इसके अलावा और भी खजाने हैं और उन खजानों से संपन्न बनो, उसे उन खजानों की अनुभूति कराए जाएं कि संकल्पों की नेगेटिविटी न हो और खुशी रूपी खजाना सब चीज हो, तो उस स्थूल धन के खजाने की कमी का अनुभव नहीं होगा। तो आज जो विषय है उसमें समय, समय को कैसे, संकल्पों को और श्वास को कैसे सफल करें, समय को सफल कैसे करें, ये तो आप सब जानते हैं, तभी तो यहाँ पर बैठे हैं। समय को पहचाना है, बाप को पहचाना है, अपना समय तन मन धन सब लगा रहे हैं ईश्वरीय सेवा में, अपने को परिवर्तन करने में, तो बस समय तो सफल कर रहे हैं, लेकिन मुख्य बात समय की, समय की मुख्य विशेषता क्या है, एक विशेषता क्या है? बहुत विशेषताएं हैं, समय कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। कभी भी वो समय जो गुजर गया वो उस कल्प में तो दोबारा आता ही नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखता। आज मानो कौन सी तारीख है, 26 तारीख है, अब जो कल बीत गया 25 जून 2018 वो दोबारा आएगा, इस कल्प में तो नहीं आएगा। इसीलिए समय को सफल करने का सबसे बड़ा तरीका एक है कि हम भी पीछे मुड़कर ना देखें, यानी कि जो बात बीत गई उसके मनन चिंतन में ही रह रहे हैं, बस उसमें समय वेस्ट जाता है, तो पुरानी बातों का स्मरण नहीं करें। एक बात समय को सफल करने की ये है। साथ ही साथ जब समय सफल होता जाता है तो संकल्प, बाबा ने कहा कुछ दिन पहले, बाबा ने एक संदेश में कहा था कि बाबा बच्चों को अभी एक सर्टिफिकेट तो देते हैं। कौन सा सर्टिफिकेट देते हैं? कि बच्चों के विकारी संकल्प तो नहीं चलते, उन पर तो, विकारी संकल्पों पर तो बच्चों ने काफी विजय प्राप्त की है। खुशी की बात है ना, तो अपने लिए तालियां बजाओ कि भगवान ने सर्टिफिकेट दिया है कि बच्चों के विकारी संकल्प तो नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी बहुत चलते हैं। तो इसीलिए बाबा ने हमें काफी, जो जितना तक हम आगे बढ़ गए हैं वो तो सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन अभी उससे भी बहुत आगे व्यर्थ संकल्प न चलें, उसकी और निशानी क्या है, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है। जबकि बाबा ने ये समय, संकल्प और श्वास, श्वास की भी क्या विशेषता है, श्वास तो देखो हम सबका चल रहा है, तभी तो यहां बैठे हैं। भक्ति मार्ग में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ऊपर से अपने श्वास लिखा कर लाता, इस जन्म में उसे कितने श्वास लेने, तो जब श्वास लिखा कर ही लाए हैं, अब मनुष्य के हाथ में है कि वो, हर व्यक्ति के हाथ में, कि उस श्वास को वो कितने समय में खर्च करता है। जैसे मानो धन है किसी के पास, मानो 1 लाख रुपया है, अब वो उसे खर्च करता जाएगा, रोज मानो कुछ 5-10 हजार खर्च करेगा तो 10 दिन में वो खर्च हो जाएगा, लेकिन उसी धन को अगर वो मानो 100 रुपए रोज खर्च करेगा तो उतना ही समय ज्यादा चलेगा। तो ऐसे ही श्वास की बात है, श्वास हमारे पास इस जन्म के लिमिटेड है, तो वो श्वास को हम कैसे ज्यादा समय तक चलाएं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जितना ज्यादा समय चलाएंगे उतनी आयु भी लंबी हो जाएगी, उतना इस जन्म में पुरुषार्थ का समय भी हमें ज्यादा मिलेगा। तो उसकी विधि भी बाबा बताते रहते हैं मुरली में, बाबा क्या सिंपल विधि बताते हैं, इस चीज से आयु बढ़ती है। किस बात से आयु बढ़ती है? योग से आयु बढ़ती है, योग से आयु बढ़ती है। देखो ब्रह्मा बाबा ने खुद अपनी आयु बढ़ाई, ब्रह्मा बाबा के उसमें जन्म पत्री में भी लिखा था, हाथ की रेखाएं भी कहती थी कि 60 वर्ष आयु है ब्रह्मा बाबा की। लेकिन बाबा ने योग के द्वारा बढ़ाते 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 कितने तक कर लिया, 93 साल तक, 93 तक योग किया। तो इस प्रकार से, और ये कैसे होता है, श्वास का इससे बहुत गहरा संबंध है। जितना हम श्वास कम खर्च करेंगे, और आप सब तो अनुभवी बैठे हैं, बाबा ने इतने सारे अनुभवी युगल लोगों को बुलाया है, इस जन्म का भी अनुभव, पुराने जन्म का भी अनुभव, और नए संगम युगी जीवन का भी अनुभव, दोनों में कंट्रास्ट आप लोगों के जीवन में है। तो जब मनुष्य किसी विकार के वशीभूत होता है, क्रोध आया, बड़ी तेज तेज बोलेगा, हाँ बहुत, बिल्कुल पास में भी व्यक्ति खड़ा है तो भी उसकी आवाज तेज हो जाएगी, श्वास तेजी से चलने लगेगा, आंख लाल हो जाएगी, कर्मेंद्रियां उसकी जैसे बहुत ज्यादा ये हो जाती हैं, शीतलता छोड़ देती हैं, और जब बहुत विकारों के वशीभूत होता है, श्वास बहुत तेजी से चलता है। कोई भी विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, संकल्प तेजी से चलेगा अंदर ही अंदर, और जब श्वास तेजी से चलेंगे तो कम श्वास अवेलेबल रह जाएंगे। ज्यादा हम श्वास खर्च कर रहे हैं तो नेचुरली आयु कम हो जाएगी। तो इन सब के बचत का क्या तरीका है, कैसे हम इन सब को बचाएं, ये हमें देखना है। कमाई तो हम सब कर रहे हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि कुछ लीकेज भी हो जाती है, वेस्ट भी हो जाते हैं। ये खजाने जमा कर रहे हैं लेकिन खजाने वेस्ट भी होते रहते हैं, लीकेज हो जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि खजाने लीकेज ना हो, वेस्ट ना हो। वेस्ट कम होंगे, जमा होते जाएंगे खजाने, वो शक्तियां जीवन में जमा होती जाएंगी, किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होंगे। तो उनको कैसे हम जमा करें, उन सब का आधार क्या है, बाबा ने बताया कि ये शक्तियों के जमा करने का आधार है। सबसे पहले है एक, इस बाबा ने क्या करा है, हा? एक हमें अभी महसूसता ये होनी चाहिए, सबसे सूक्ष्म वर्तमान समय के मुताबिक एक शक्ति की पहली आवश्यकता है, वो है महसूसता की शक्ति। ये रियलाइज होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। जैसे कई बार होता है, हम नॉर्मल वे में कह देते हैं, कोई बात हुई, गलती हुई तो कह देंगे सॉरी, बस नॉर्मल वे में कह देते हैं। लेकिन वो महसूसता क्या, अंदर की महसूसता है या दिखावे की महसूसता है? बाबा कहते हैं दो प्रकार की महसूसता, एक दिखावे की महसूसता, एक दिल की महसूसता। तो अक्सर करके हम दिखावे की महसूसता में बिजी हो जाते हैं, कई बार दिन में होता है। तो बाबा ने कहा जब दिखावे की महसूसता होती है तो क्या होता है, अंदर में हमारी कॉन्शियस, तो कोई बात गलत हो गई तो कॉन्शियस तो बाइट करती है, अंदर अंतरात्मा हमें धिक्कारती है, क्योंकि ज्ञान तो है ना कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था लेकिन ये हो गया, ऐसी वाणी क्यों हो गई, ये वाणी तो मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आदि आदि। तो ज्ञान तो है लेकिन पुराने संस्कारों के वशीभूत कोई बात अगर हो जाती है तो क्या होता है, फिर हमारा बहुत समय तक संकल्प भी चलता है, समय भी वेस्ट होता है, और समय वेस्ट हुआ तो श्वास भी वेस्ट हो गए। जैसे इसीलिए पहली वर्तमान समय के अनुसार आवश्यकता है कि एक हमारे अंदर दिल की महसूसता हो। बाबा कहता है दिखावे की नहीं, दिल की महसूसता होगी तो क्या होगा, दिलाराम का आशीर्वाद मिलेगा और इतनी शक्ति हो जाएगी, मिल जाएगी कि फिर आगे उस विकार के वशीभूत होकर हम कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे, उल्टा बोल नहीं बोलेंगे। इसीलिए एक तो पहली वर्तमान समय की आवश्यकता है दिखावे کی نہیں دل کی محسوستا ہو اور اس سے بہت ویکتی ہلکا ہو جاتا ہے. جب ریلائز ہو جاتی ہے کوئی چیز تو ویکتی ایک دم ہلکا ہو جاتا ہے. کیا کریں, جب محسوستا کی شکتی اگر آ جائے گی تو کیا ہوگا, کیونکہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لیکیج نہ ہو, ویسٹ نہ ہو, تو محسوستا کی شکتی اگر ہوگی تو کوئی بھی غلط کام نہیں ہوگا, مریادا کے وپریت نہیں. اور اس کے لیے محسوستا کی شکتی آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا, ہم چاہتے ہیں بدلنا لیکن کئی بار بدل نہیں پاتے, ہم چاہتے ہیں ایسا نہ ہو لیکن ہو جاتا ہے. کیوں جاتا ہے, آج کے یوگ میں بولتے ہیں انفارمیشن ایکسپلوژن ہے, بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہیں, انٹرنیٹ پر ہے, بکس میں ہے, بہت ساری ای میلز وغیرہ سب میں ہے, لیکن انفارمیشنز تو ہے لیکن ہم اس انفارمیشن کو نا کیا کریں, ہاؤ ٹو کنورٹ اٹ انٹو وزڈم, انفارمیشن کو وزڈم میں, انوبھو میں, اپنے جیون کے انوکول بنانے میں اسے کیسے یوٹیلائز کریں. تو اسی لیے اس کو ہم جو انفارمیشن ہے اس کو ہم اپلائی نہیں کر پاتے. مانو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, سگریٹ پیک میں لکھا ہوتا ہے دھوم پان کرنا ہانیکارک ہے, یہ ہمیں تھیوریٹیکلی معلوم ہے, لیکن معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو, دھومپان نہ کرے, لیکن کمزوریوں کے پرانے سنسکاروں کے وشیبھوت ہو کر کے ویکتی دھومپان کر لیتا ہے, انیک بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. بچپن سے ہم سنتے پڑھتے آئے ہیں کرودھ نہیں کرنا چاہیے, کرودھ کرنے سے ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جو ویکتی کی نرنے شکتی کو کنٹھت کر دیتے ہیں, ڈسیزن میکنگ پاور دھومل ہو جاتی ہے. جانتے ہیں کرودھ نہیں کرنا چاہیے لیکن کہہ دیتے ہیں کیا کریں, ہم کرودھ کرنا نہیں چاہتے لیکن کرودھ آ جاتا ہے. ہم بہت باتیں ایسی ہیں جو کرنا نہیں چاہتے لیکن ہو جاتی ہیں, اور اس کا کارن کیا ہے, سیلف امپاورمنٹ نہیں ہے, آتما میں شکتی نہیں ہے, کمی کم جو انفارمیشن ہے لیکن شکتی نہیں ہے کہ اس چیز کو ہم اپلائی کر سکے اپنے لیے دوسروں کے لیے. اسی لیے آوشیکتا یہ ہے کہ ان شکتیوں کو ہم ان کا سنگرہ کریں جو سوکشم شکتیاں ہیں, اور اسی لیے وشے ہے سمے, سنکلپ اور شواس کی شکتی. تو سنکلپ کی شکتی کے لیے تین باتیں ایک مکھیہ ہیں. کون سی تین باتیں, ایک ہے سنکلپ شکتی جو ہے یہ وچار لاتی ہے, تھاٹس. تو کوانٹٹی آف تھاٹس, وچاروں کی سنکھیا, اس پر ہمیں دھیان دینا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نارمل کیس میں جب مینجمنٹ کے کورسز کراتے ہیں ہمارے بہن بھائی کہتے ہیں بھائی ایک دن میں 30-35 وچار پرتی منٹ آ جاتے ہیں, مطلب ہر 2 سیکنڈ میں ایک وچار آ جاتا ہے, قریب 30-35 وچار پرتی منٹ میں آ جاتے ہیں, تو سارے دن میں لگ بھگ 25-30 ہزار وچار تو ہو ہی جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, مائنڈ اتنا ہینڈل کر سکتا ہے, لیکن جب کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے, آپ یہاں بیٹھے ہیں ابھی, آپ کو ایک دم کوئی انفارمیشن آ جائے موبائل پر یا کوئی نیوز آ جائے کہ آپ کا نیئر اینڈ ڈیئر کوئی سمبندھی ہے بہت, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, تو بس ابھی تک آپ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے سن رہے تھے, سڈنلی وچار چلنے لگیں گے, کوانٹٹی آف تھاٹس بڑھ جائے گی, وچاروں کی سنکھیا بڑھ جائے گی, بڑھ کے 25-30 ہزار کی بجائے 40,000, 50,000, 60,000 تک ہو جائے گی, اور کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اس کا تو فیملی ابھی یہ ہے, چھوٹے ہیں, بچے ہیں. تو وچاروں کی سنکھیا جب بڑھ جاتی ہے بہت, तो क्या करना चाहिए। जब विचार बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति में स्ट्रेस, टेंशन, डिसीजन मेकिंग पावर उतनी नहीं आती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो जब अगर क्वांटिटी, और ये हम सब रहते हैं जीवन में, तो संसार का नियम है, कोई भी रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आता है, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, हार जीत, ये हमारे जीवन का ही एक अंग है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो आएंगे ही। लेकिन ब्यूटी ये है कि इसको हम हैंडल कैसे करें, जिससे कि हमारी मानसिक अवस्था डगमगाए नहीं। तो इसलिए जब ऐसी स्थिति हो तो क्या करना चाहिए, बड़ा अच्छा कहा है, ऐसी अवस्था हाँ? जीवन के लिए बड़ा, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जानते होंगे बाबा भी, जब ब्रह्मा बाबा के साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला, बाबा भी क्लास में जब आते थे, 6-7 साल मैं बाबा के साथ रहा, क्लास में आते थे, बाबा फूल लाते थे, और देखो बच्चे वो तो बगीचा होता है, उनमें अनेक प्रकार के फूल होते हैं, बाबा तो आके देखो अपने इन चैतन्य फूलों को देख रहा है, कोई गुलाब के फूल हैं, कोई चमेली के हैं, जैसी जिसकी खुशबू है, गुणों की खुशबू, शक्तियों की खुशबू जैसी है, बाबा उस नजर से उन बच्चों को देख रहा है। बस बाबा खुश होते थे, मुस्कुराते थे, बड़ा अच्छा किसी ने इसी में कहा है कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, सुना होगा आपने, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है जीवन। तो जीवन में सदा मुस्कुराते रहे, खुशी का खजाना रहे, हार जीत तो होगी ही, होती रहती है, लेकिन फूलों की तरह सदा खुशबू देते रहे। तो ये जब कभी ऐसी क्वांटिटी ऑफ थॉट सडनली बढ़ जाए, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, तो क्या करना चाहिए, इसके लिए दूसरी बात है क्वालिटी ऑफ थॉट्स। एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की संख्या, दूसरी है क्वालिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की गुणवत्ता, कि ये दोनों एक दूसरे के मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात अगर क्वांटिटी बढ़ती है, बहुत क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स कम हो जाएगी, और अगर हम क्वांटिटी ऑफ थॉट, क्वांटिटी बहुत बढ़ गई, उसको नॉर्मल लाने का तरीका क्या है, या तो कोई भाई माइंड में बहुत स्ट्रेस हो गया, दवाई खाएं, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट बहुत होंगे। तो एक है मेडिकेशन दवाई के द्वारा, और दूसरी है मेडिटेशन, मेडिकेशन या मेडिटेशन। तो जब विचार ऐसे हो तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स को हम बढ़ाएं, और वो बढ़ाए जाते हैं ऑटो सजेशन से, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, परम धाम की निवासी हूँ, जो यहाँ से शुरू होता है ये, लेकिन जब धीरे 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 और बढ़ता जाता है क्वालिटी ऑफ थॉट, तो बस मैं इस देह से न्यारी हूँ, और अपने को हम विजुअलाइज करते हैं धीरे धीरे होते हुए मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ, और देह से जितने न्यारे विदेही होते चले जाते हैं, वो ये क्वालिटी ऑफ थॉट्स बढ़ती चली जाती है, तो क्वांटिटी ऑफ थॉट्स अपने आप कम होती जाएगी। तो उससे स्ट्रेस, टेंशन, ये ब्लड प्रेशर एकदम धीरे धीरे नॉर्मल आता जाएगा। तो संकल्पों को बचत करने का एक ये तरीका है कि जब कभी ऐसी परिस्थिति हो, और इसके लिए अभ्यास जरूरी है, अमृत वेले जब हम अभ्यास करते हैं ना, तो इन लीकेज को रोकने का एक तरीका है, सबसे पहला कि अमृत वेले हम अपनी दिनचर्या को फिक्स करें। कौन सी दिनचर्या, शरीर की दिनचर्या और मन की दिनचर्या, आत्मा की दिनचर्या। शरीर की दिनचर्या तो हम फिक्स कर लेते हैं कि आज ये काम करना है, यहां जाना है, उससे बात करनी है, तो ये दिनचर्या में तो हम सबका अनुभव है ही, लेकिन मन की दिनचर्या, वो दिनचर्या बहुत आवश्यक है, कैसे, वो संकल्पों के ऊपर हमारा नियंत्रण। ब्रह्मा बाबा जब थे, तो उन्होंने जब ये अनुभव किया कि ये मन तो बड़ा चंचल है, ज्ञान में शुरू में आए 1936-37 में, ज्ञान भी है मैं आत्मा हूँ देह नहीं हूँ, ये आत्मा है, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा, जो परिवार वाले थे हम सब ने सुना है, बाबा ने लिख लिख कर दीवार पर भी लिख देते थे, किताबों में डायरी में लिखा ये आत्मा है, तो बाबा की आत्मिक दृष्टि धीरे धीरे पक्की हो गई। लेकिन मन तो चंचल है, भाग जाता है भक्ति मार्ग में कहते हैं, तो बाबा ने क्या किया, मन को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा मन को, कि हे मन मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा मंत्री है, तू मेरा कर्मचारी है, मैं राजा हूं लेकिन तूने मुझ आत्मा राजा को इतना कमजोर कर दिया, मैं कमजोर हो गया, तू शक्तिशाली हो गया और तू जहां जहां भागता रहा मैं भी तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन अब मैं तुझे कह देता हूं हे मन, अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा क्योंकि मैं आत्मा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया और अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। बाबा ने ये पक्का करा और ऐसे ही पत्र अपने बाबा ने बुद्धि को भी लिखा कि हे बुद्धि तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा को बहुत शक्तिहीन बना दिया, अब मैं तुझे भी कह देता हूँ अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं। और बाबा ने ऐसे स्वमान में स्थित होकर के तब मन को ऑर्डर किया, बुद्धि को ऑर्डर किया। जब हम स्वमान में स्थित होकर ऑर्डर करते हैं वो हमारी बात मान लेते हैं। जैसे लौकिक में कोई ऑफिसर होता है या मिनिस्टर है, जब तक वो अपनी सीट पर है सब उसका कहना मानते हैं, जब सीट पर है, और जब अगर सीट पर नहीं है, रिटायर हो गया, ट्रांसफर हो गया, या पॉलिटिशियन है, इलेक्शन हार गया, तो सीट पर नहीं है तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। ऐसे ही जब हम स्वमान की सीट पर होते हैं तो ये मन बुद्धि रूपी कर्मचारी हमारी बात मान लेते हैं और हमारे कहने पर चलते हैं। जो बाबा कहते हैं रोज अपनी दरबार लगाओ, तो ये दरबार लगाने का तरीका है, जो बाबा कहते हैं रोज दरबार लगाओ, देखो मेरे कर्मचारियों ने मेरे कहने पर ही सारा कार्य किया, या मैंने हुक्म दिया और उन्होंने हुक्म नहीं माना, ऐसा तो नहीं है। तो ये है हम पहला एक हम अमृत वेले अपनी दिनचर्या को फिक्स करें, और उससे क्या होगा, जब अमृत वेले हमारी दिनचर्या मन की, आज मुझे जैसे लौकिक कामों की दिनचर्या बनाते हैं तो मन की, इतने समय मुझे बाबा की सेवा में देना है, इतना इसके साथ साथ ना संकल्प, आज मुझे इस स्थिति में स्थित होकर के बाबा के साथ रूह रुहान करनी है, बाबा भी कहता है वैरायटी हो, कभी किसी रूप में सखा रूप में बाबा को याद करो, कभी बाप टीचर गुरु, अलग अलग मन की हम दिनचर्या जब बनाते हैं तो जितनी वैरायटी होती है उतना आनंद आता है। हर चीज में वैरायटी तो जीवन का ही एक वो है। और इसके साथ साथ जब हम देख रहे थे महसूसता हो जाती है कि भई हाँ अब मुझे बदलना है, अब मुझे बाबा जो मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि अब व्यर्थ संकल्प भी न चले, विकारी तो नहीं चलते, व्यर्थ संकल्प भी न चले, इसके लिए क्या करना है, जो दूसरी शक्ति की जरूरत है वो है परिवर्तन शक्ति, वो बहुत आवश्यक। हम चाहते हैं परिवर्तित होना लेकिन परिवर्तन की शक्ति न होने के कारण नहीं हो सकते पूरा। तो इसलिए इसके लिए पहली बात, बाबा ने भी परिवर्तन कब किया, बाबा ने भी जब कहा, हाँ शिव बाबा ने कहा अपने को सदा क्या समझो, मैं ही अर्जुन हूं, भाई दूसरा बदले तब मैं बदलू, नहीं मैं अर्जुन हूं, मुझे बदलना है, मुझे दूसरे को नहीं देखना है। और इसीलिए बाबा ने सबसे पहले क्या करा, हम बच्चों में परिवर्तन लाने के लिए हमारे स्वमान स्वस्थिति जो पहली चीज है उसमें परिवर्तन किया। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ये परिवर्तन किया। ये तुम्हारा घर नहीं है, वो आत्मा का घर परम धाम है, आदि आदि जो बाबा ने पहले इसका परिवर्तन किया। इससे क्या होता है दूसरा परिवर्तन, वृत्ति का परिवर्तन। वृत्ति बड़ी सूक्ष्म चीज है। इस जन्म की तो बात हमें याद है, संकल्पों पर भी हम कर देते हैं नियंत्रण, लेकिन कई बार वृत्ति में, सब कॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज होती है तो वो सडनली एरप्ट हो जाती है, बाहर होती है। हम कहते हैं अरे ये बात तो मेरे मनचित में भी नहीं थी, ये कहां से एकदम मैंने बोल दिया, ये कर्म मैंने कैसे कर लिया। बिल्कुल कुछ वो भी नहीं होता है आवेश में आके व्यक्ति अगर कुछ बोल देता है, कर्म कर लेता है और बाद में फिर जीवन भर पछताता रहता है। तो वो परिवर्तन शक्ति के लिए वृत्ति को देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इस जन्म की बात नहीं है। आत्मा में जो अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, वो वृत्ति के किसी भी जन्म के कोई संस्कार सब कॉन्शियस माइंड में है, वो एरप्ट हो जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं और व्यक्ति उसके वशीभूत होकर बोल देता है, कर्म कर लेता है। तो इसीलिए परिवर्तन शक्ति के लिए क्या करना है, देखो परिवर्तन शक्ति तो दुनिया में हरेक के पास है और करते हैं हम सब लोगों ने। सूरदास, तुलसीदास, कवि भरत हरि, सबके उदाहरण सुने हैं। सूरदास ने आंखें फोड़ ली क्योंकि आंखें विकारी दृष्टि जाती थी, लेकिन उसको बाद में ये अनुभव हुआ कि आंखें फोड़ने से कुछ नहीं, मन तो मेरा अभी भी अपवित्र है, मन के अंदर वृत्ति अगर कामी है, क्रोधी है, तो आंखें फोड़ने से कुछ फायदा नहीं। उसकी रचनाओं में, सूरदास की सब रचनाओं में ये दिखता है। जहां एक तरफ भक्ति की रचना है, वहीं पर ये कि मन पापी है, कपटी है, हे प्रभु मेरे मन को शुद्ध करो, मैं क्या करूं। तो अभी भी मन भटकता है, तो दृष्टि में दोष नहीं है बल्कि मन में दोष है। और इस कारण से अगर हम संकल्पों को सफल करना चाहते हैं तो ये बात को हम देखें कि कितना कितना हमारे संकल्पों के अंदर शक्ति आई है। और वो परिवर्तन शक्ति कैसे, तुलसीदास का भी देखो ऐसा ही है, उदाहरण है। बहुत तुलसीदास में भी जट बहुत पत्नी के वियोग में गया और सांप को ही रस्सी समझ के चढ़ गया, लेकिन उसे ये भी, मतलब मनुष्य जब इसके विकारों के वशीभूत होता है तब उसकी मनोस्थिति क्या होती है। और जब उसे धिक्कारा गया, उसकी पत्नी ने धिक्कारा, भाई इतनी प्रीत तुम्हारी भगवान के साथ होती, बस वो उसका परिवर्तन का समय था, स्पार्क का समय था, तब से उसका जीवन परिवर्तन हो गया। उसके बाद उसकी रचनाएं देखो विश्व प्रसिद्ध हो गए। ऐसे ही कब स्पार्क हो, ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं लेकिन कब वो परिवर्तन की चिंगारी हमारे अंदर जल जाए। और उसी के लिए ही तो आप लोग आए हो, यहाँ पर बहुतों के अंदर परिवर्तन की चिंगारी जली होगी और यहाँ जाके भी आप लोगों को उसका, उस चिंगारी को जलाए रखना है, उसको रोज ये करना है, उसको रोज जो बाबा कहता है ना, संकल्प है बीज बोया आपने, उस बीज को रोज जल दो, तभी तो वो अंकुरित होगा और वो अंकुरित होता जाएगा। तो ये परिवर्तन की शक्ति, कवि भरत हरि थे, देखो परिवर्तन बहुत चीजों में करना पड़ता है, बहुत राजा थे, बहुत बड़े उन्होंने, तो बस उन्हें भी वैराग्य आया, पत्नी से वैराग्य आया और वो छोड़ छाड़ के जंगल में चल दिए, जा रहे थे। चांदनी रात थी, एक चांदनी रात में देखा सड़क पर कोई चीज एकदम चमक रही है, और चमकती हुई चीज को जब देखा उन्हें लगा कोई हीरा है या सोने की चीज है, बस झुके उठाया, वो क्या था, पान की पीक, पान खा के थूक देते हैं ना, अब उसमें वो चांदनी रात में चमक रही थी, उसमें उन्होंने हाथ डाला, देखा, बस वो उनको रियलाइज हुआ कि मैंने पत्नी से वैराग कर लिया लेकिन अभी भी मेरा मन पदार्थों से, दौलत से, उनसे उस वैराग नहीं आया है, और उसके बाद से उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ, संन्यास कर लिया, वो उनके जीवन का सदाकाल का हो गया। देखा तो हमें भी देखना है, कई बार मसानी वैराग आता है, वो नहीं परिस्थितियों के वश आ गया, लेकिन वो वैराग्य हमारा परमानेंट हो। यहाँ से जो आप इस भट्टी में आए हैं, बहुत क्लासेस सुनी हैं, परिवर्तन करके जा रहे हैं, परिवर्तन का संकल्प है, तो जरूर उसको रोज रिपीट करो। रोज बाबा के कमरे में जाओ, जो संकल्प किया है उसको जल दो, तो क्या उसमें दृढ़ता आएगी और परिवर्तन होता चला जाएगा। तो इसलिए स्मृति का परिवर्तन के साथ वृत्ति का परिवर्तन, और जब वृत्ति का परिवर्तन हो जाता है तो कृति का भी, कर्म का भी परिवर्तन हो जाता है। देखो ये वृत्ति जो है ना, बहुत सूक्ष्म है। एक है अंतर्मुखी वृत्ति, एक है बाहरमुखी वृत्ति। हमें कैसे पता चलेगा? समझते हैं जो व्यक्ति बात करता है, बहुत वो करता है, वो बाहरमुखी है, और अंतर्मुखी मोटे रूप से समझ लेते हैं जो गंभीरता आदि है। लेकिन एक चीज से हम चेक कर सकते हैं अपने को भी कि मेरी वृत्ति कैसी है। तो जो अंतर्मुखी वृत्ति वाला होगा वो वायुमंडल को भी परिवर्तित कर देगा। जैसा होगा बस उसके आते ही वायुमंडल में एकदम परिवर्तन हो जाएगा। और अगर उसकी अंतर्मुखी वृत्ति है, और जिसकी बाहरमुखी वृत्ति है वो वायुमंडल से प्रभावित हो जाएगा, वायुमंडल के प्रभाव में आ जाएगा। तो देखो हम लोग भी ना मोटे तौर पर बाहरमुखी प्रवृत्ति में जनरल रहते हैं। मानो कहीं किसी शमशान घाट में गए, किसी का मृत्यु के अवसर पर वहां गए, तो बड़ी वैराग्य वृत्ति आएगी। वो वायुमंडल के प्रभाव से हमारी वृत्ति में परिवर्तन हुआ, वो है बाह्य मुखी प्रवृत्ति। लेकिन हमारी ऐसी हो अंतर्मुखी प्रवृत्ति, हम जहां जाए वहां के वायुमंडल को परिवर्तन कर दे, उसको दिव्य बना दे, अलौकिक बना दे, और लोग उसको अनुभव करें वैसा। इसीलिए परिवर्तन की शक्ति जिसके अंदर, ये परिवर्तन, समान का परिवर्तन, वृत्ति का परिवर्तन, फिर इसके हिसाब से कृति का, कर्म का भी परिवर्तन आदि आदि आ जाता है। और इसके लिए एक तीसरी शक्ति की जरूरत है, वो शक्ति है मनन शक्ति। क्योंकि परिवर्तन के लिए ज्ञान का हमें मनन करना ये बहुत जरूरी है। विचार सागर मंथन, बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं, कोई भी चीज हो उसका विचार सागर मंथन करो। क्या मंथन करो? मुरली की कोई पॉइंट ले लो ना? इस पॉइंट में राज क्या है, इस पॉइंट से क्या नशा हमें चढ़ेगा, इस पॉइंट से मेरे लिए क्या लाभ है, इस पॉइंट से ईश्वरीय सेवा में दूसरों के लिए क्या लाभ है। किसी भी पॉइंट की गहराई में जाए। प्रकृति, बाबा कहता है ना, अब प्रकृति का भी परिवर्तन करो। अब मुझे याद है बाबा के साथ मनन करते, बाबा कहता है प्रकृति जीत बनो। मुझे याद है दादी जानकी जी, ये 31 दिसंबर 1999 का समय था, 2000 लगने वाला था मिलेनियम, नया 100वां वर्ष। तो दादी की तबीयत बहुत खराब थी। लोटस अहमदाबाद में थे, और अहमदाबाद डॉक्टर ने भी बोल दिया था बहुत तबीयत खराब है दादी जी की, और भाई जो करना है करो। तो बाबा के यहाँ पर दादी ने उस दिन 31 दिसंबर को, आपको मालूम है बाबा आते हैं, तो बाबा आए हुए थे। तो दादी जी और निर्वैर भाई वगैरह ने बताया बाबा को कि बाबा दादी जानकी जी की तबीयत तो बहुत खराब है और ऐसा ऐसा डॉक्टर बोलता है। तो बाबा ने बस एक सेकंड दादी जी को दृष्टि दी, कहा बच्ची कोई नहीं, वो आत्मा तो प्रकृति जीत आत्मा है, ठीक हो जाएगी। बस एक लाइन बोली, और उस समय से आज तक 18 वर्ष तो बीत गए, देखो दादी कितने सेवा, अभी थोड़े दिन पहले जर्मनी में थे, लंदन में थे, पहली बार भी वहां से आए, तुरंत कई जगह गए, दादी का जाना हुआ। इतना हम लोग भी सेवा कोई और जवान भी नहीं कर सकता जितना 103 वर्ष की आयु में दादी जी करें। प्रकृति जीत बने हुए, तो हम सबको भी प्रकृति जीत बनना है ना। तो पुरुष और प्रकृति का ये खेल है, ये आत्मा पुरुष है, ये प्रकृति है। इस पुरुष और प्रकृति के खेल में हम पुरुष को तो सतो प्रधान बनाने का काम कर रहे हैं, पुरुष माने आत्मा, रोज आत्मा में ज्ञान योग धारणा सेवा ये सब कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकृति का क्या करें? यही तो हमारा सबसे निकट का साथी है। तो इस पुरुष और प्रकृति के खेल में हमें देखना है हमें कैसे प्रकृति जीत बनना है। और ब्रह्मा बाबा को भी हमने देखा कैसे प्रकृति जीत बने। कई बार बाबा से वैसे मिले थे, हमेशा बाबा से मिलते थे, कोई प्रश्न होता था, कोई बात होती थी, बाबा से पूछते थे, बाबा जवाब देता था। लेकिन जब हम 17 जनवरी 1969 को बस बाबा ने हमें अपने पास बुला लिया, हम आसाम में पोस्टेड थे और बाबा ने बस बुला लिया। ये भी एक कथा है, वो तो समय लेगा बहुत, लेकिन जब आ गए और यहाँ पर बाबा से मिले तो बाबा को देखा। हाँ, मन जीते जगत जीत की स्थिति। बाबा के सामने जाते थे, बाबा जरा सा दृष्टि देते थे, कहते थे बच्चे, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। इससे पहले जब भी हम 5-6 साल पहले हम हर बार मिलते थे, हर साल में 3-4 बार मिलना होता था, बाबा को बताते थे अपने मन की बात तो बाबा समाधान देता था। लेकिन अंतिम 2 दिनों में ये देखा बस एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी, बाबा ने कहा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा। तो मन के विचारों को भी जान लेना, ये स्थिति है मन जीते जगत जीत की स्थिति, कर्मातीत स्थिति, जो हम सबको भी धारण करनी है। कैसे करेंगे? मन के संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त करके। तो एक तो ये बात देखी, और क्या देखी? अंत समय में, क्योंकि हम सबको शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन ब्यूटी तब है जब हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें, जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया। हमने देखा ब्रह्मा बाबा को कि बस 18 जनवरी हम यहीं थे, बाबा ने मुरली चलाई, ऊपर हिस्ट्री हॉल पांडव भवन आप लोगों ने देखा होगा, और सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई, योग कराया। उसके बाद बाबा आए, ईशु दादी जी जो हैं अभी भी विश्व कल्याणी में रहते हैं, आप सब जानते हैं, मिलते हैं, शुरू से बाबा के विशेष साथी रहे हैं। तो ईशु दादी को बाबा ने बोला बच्ची आज जितने भी पत्र लिखाने हो लिखा लो, पत्र पेंडिंग ना रहे, नहीं तो बच्चों के संकल्प चलेंगे, बाबा का जवाब नहीं आया। देखो बाबा को मालूम था, तभी तो बाबा ने बोला कि जितने भी पत्र लिखाने हो लिखा लो। तो कर्मातीत जब आत्मा होती है निकट, तो उसे आभास हो जाता है कि बस मुझे अब ये शरीर छोड़ना है। और तो सारे पत्र बाबा ने लिखे, नक्की लेक के पास जो म्यूजियम है उस म्यूजियम में सेवाएं भाई करनी है, वो मकान लेना है या नहीं, तब तो हमारे यज्ञ में इतने साधन संपदा इतना सब नहीं था, लेकिन बाबा ने कहा वो मकान लेना है, सेवा में लगाना है, जहां भी म्यूजियम है। तो उस फाइल पर भी बाबा ने हस्ताक्षर किए। फिर रोज रात्रि क्लास 9 बजे होती है, 9:15। उस दिन बाबा ने कहा शाम को ही 6-6:30 बजे की, बच्ची आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, एक भाई हैं जमुना प्रसाद भाई, उनको इन्फॉर्मेशन दे के कहा, सबको इन्फॉर्म कर दो कि सब भोजन करके क्लास में आए, क्योंकि जल्दी की 6:30-7 थी, कोई सोचता मैं बाद में भोजन कर लूंगा, लेकिन बाबा को तो आभास हो गया था, कर्मातीत अवस्था थी कि बस अब ये बच्चों से मेरा अंतिम साकार मिलन है। तो उस रीति से बाबा ने अंतिम क्लास कराई और अंतिम क्लास करा के उस क्लास की एक विशेषता थी, वैसे बाबा को कभी कभी खांसी आती थी, गला साफ करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उस अंतिम क्लास में उसकी टेप मिलती है, आप पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं, सीडी मिलती है, तो एक बार भी बाबा को न खांसी आई न गला साफ करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि कर्मातीत अवस्था जब हो जाती है व्यक्ति की तो कोई भी उसे न उसके कर्म भोग के ऊपर योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। कर्म भोग, ये खांसी, ये सब कुछ नहीं है, और एक बार भी खांसी नहीं आई और एक बार भी ऐसी स्थिति नहीं हुई, ये है और कर्मातीत अवस्था की आत्मा का लक्षण। ये हम सबको भी प्राप्त करनी है, हम सब भी अगर उस स्थिति में होंगे हमें भी आभास हो जाएगा कि हाँ अब हम शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भीष्म पितामह का गायन है ना, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा, तो ब्रह्मा बाबा की कितनी, क्योंकि गायन ही है अंत मते सो गति का गायन, अंत में जैसी हमारी मति होगी वैसे ही गति होगी, वैसा ही जन्म होगा, वैसे ही हमारा सतयुग से लेकर पूरा का पूरा सारा जन्मों की चलता रहेगा चक्र। लेकिन अंतिम संकल्प हमारा कैसा है उस पर सारा निर्भर है, और वो निर्भर है इस बात पर कि हमारा अभ्यास कैसा रहा है पूरे संगम युग में। जैसा अभ्यास रहा होगा वैसा ही अंत में संकल्प चलेगा। अभ्यास अगर हमारा भौतिक चीजों का ही चलता रहा, संबंधियों का ही चलता रहा, उन्हीं में ही लिप्त रहे, तो अंत में भी वही संकल्प आएंगे, स्वाभाविक है। इसीलिए पहले से ये अभ्यास और लंबे समय का अभ्यास ज्ञान योग का इनका आवश्यक है। तो बाबा ने वो क्लास कराई, एक बार भी बाबा को जरूरत नहीं हुई। वैसे भी हम देखते थे हिस्ट्री हॉल में, आपने देखा होगा बाबा की संदली के पास ना एक ट्रांसलाइट का चित्र श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का रखा रहता है, और जब कभी मानो बाबा को खांसी आती थी, हमें लगता था बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है पहले, तो उसमें बाबा तो बस स्वस्थिति को कैसे हाई करता था, ऊंचा करता था, देखो बच्चे अभी तो ये शरीर पुराना है, पुराने तत्वों का है, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, और ऐसा बस बाबा स्वस्थिति को ऊंचा करके कल नई दुनिया होगी, तत्व भी सतो प्रधान होंगे, कोई शारीरिक कष्ट नहीं होगा। तो स्वस्थिति को इतना ऊंचा कर लेता था कि परिस्थिति, खांसी रूपी परिस्थिति एकदम नीचे आ जाती थी, और फिर बाबा फिर क्लास पूरा का पूरा नॉर्मल वे में करता था। ऐसे ही हमें भी स्वस्थिति हमारे नियंत्रण में हो, इतना ऊंचा हो कि वो परिस्थिति को नीचा कर दे। तो बाबा क्लास कराई, क्लास करा के बाबा कमरे के बाहर गए, और बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, ये बाबा ने पहले शब्द कभी नहीं बोले। तो बाबा ने इस तरह एक एक संकल्प, एक एक श्वास सफल किया हुआ था, और ये सफल होता है जैसे समय के साथ साथ, छोटा भी टाइम बाबा को मिलता था बाबा कभी नहीं सोचता था कि थोड़ा ज्यादा टाइम मिले योग करें। बाबा से पार्टी मिलने आती थी, एक पार्टी, हर पार्टी को समय दिया होता था, 10 बजे बंबई पार्टी, 10:30 दिल्ली पार्टी, 11 बजे कलकत्ता पार्टी, ऐसे अलग अलग आधा आधा घंटे का समय था। कोई किसी में कम लोग होते थे, बाबा मिलते थे 10:20 पर, मानो समय पूरा हो गया, पार्टी चली गई। उसके बाद जब दूसरी पार्टी की टीचर बहन आती थी तो वो आके बस देखती थी बाबा बस अपने में मगन है, आके बोलती थी बाबा बाबा, तो कई बार बाबा को जैसे जर्क सा लगता था, अच्छा बच्ची आ गए, हाँ बाबा फलानी जगह से पार्टी लाई हूँ, हाँ हाँ बच्ची ले आओ ये बैठाओ। तो देखो एक सेकंड में यहाँ शरीर में, और अगले ही क्षण जैसे आत्मा अलग, आत्मा कोई शरीर छोड़ के नहीं जाती, बस देह से न्यारी हो जाती है, विदेही स्थिति में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति का अभ्यास ये बहुत जरूरी है, और ये अभ्यास ही अंत समय काम आएगा, जब समय संकल्प और श्वास का बिल्कुल अंतिम क्षण चल रहा होगा। तो उस समय जब चाहे हम शरीर से न्यारे हो जाएं, जब चाहे हम शरीर के अंदर आ जाएं। तो ये बाबा की स्थिति अंत तक हमने देखी, और अंत में जब बाबा ये कह के छुट्टी लेके कमरे में गए, तो कमरे में जाके बाबा ने जब शरीर छोड़ा, दादी जी के हाथ में हाथ और शरीर छोड़ दिया। लेकिन ब्यूटी यह है कि बाबा का शरीर 18 जनवरी को शरीर छोड़ा अर्ली नाइट में, और 18 की रात रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद संस्कार किया गया बाबा का। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, उसमें कोई भी कालापन नहीं आया, दुर्गंध नहीं आई। और हमें याद है जब भाइयों ने, सब वरिष्ठ भाई थे उनके साथ, हम भी उन्हें सहयोग कर रहे थे, बाबा को स्नान आदि कराया गया, तो बाबा के शरीर में काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी। नहीं तो आत्मा जब चली जाती है तो शरीर बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है। तो फिर भी वो चमकता रहा, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया था, लेकिन बाबा का शरीर न काला पड़ा न दुर्गंध आई। तो ये है प्रकृति जीत का प्रतीक। ये पांच तत्वों को भी बाबा ने इतना पवित्र कर लिया। तो हम भी कैसे प्रकृति जीत बने, उसका एक हिंट आपको दे देते हैं। ये पांच तत्व हमारी मृत्यु का कारण न बने। अगर सुनामी आई, फ्लड आया, आजकल जैसे केरल में बहुत पानी आया हुआ है, बहुत लोगों की भी मृत्यु हो गई, और अंत में तो ये पांचों तत्व अपना जलवा दिखाएंगे, तो उसके लिए प्रकृति जीत बनने के लिए हमें क्या करना है, इनको हम अपना मित्र बना लें, सहयोगी बना लें ये पांच तत्व, तो हमारा ये तत्व अंत समय तक हमारा साथ देंगे। जल का मित्रता किन में होती है, जिनमें एक जैसे संस्कार होते हैं। भाई शराबी होगा, शराबी के साथ मित्रता होगी, एक जैसे संस्कार है। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसकी आध्यात्मिकता वाले से होगी। ऐसे ही जल के साथ हम मित्रता कर ले तो जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। कितना भी फ्लड आ जाए, सुनामी आ जाए, तो जल का मुख्य गुण कौन सा है? जल का वैसे बहुत गुण है, शीतलता है, जल निर्मल है, लेकिन सबसे बड़ा गुण है एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। जल को ग्लास में ले लो, गिलास में सेट हो जाएगा, थाली में ले लो, थाली में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो, चम्मच में लो, हर जगह जल सेट हो जाता है। ऐसे ही अगर हम में भी एडजस्टमेंट का संस्कार होगा, हर व्यक्ति से हम एडजस्ट होकर चल सके, तो क्या होगा, इसका मतलब जल का संस्कार हमने अपने अंदर धारण कर लिया, तो जल अंत समय में भी हमारी सहायता करेगा, हमें कष्ट नहीं देगा, हमारा मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। तो इसीलिए हमें जीवन में ये जल के गुण धारण करने हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट, आगे बढ़ना, निर्मलता का संस्कार। जल के अंदर शीतलता होती है, कभी कोई क्रोध अहंकार आ जाए तो भी हम नॉर्मल वे में वापस आ जाए। दूसरा तत्व पृथ्वी, अर्थक्वेक भी बहुत होने हैं ना, तो इन चीजों में बहुत समय वेस्ट जाता है। मानो अर्थक्वेक आया, एक चार लोगों का परिवार है, दो मर गए, दो बच गए, तो जो बच गए वो तो जीवन भर उनको याद करते रहेंगे, उनका समय भी वेस्ट होगा, श्वास भी वेस्ट होंगे, संकल्प भी वेस्ट होते चले जाएंगे। इसीलिए उसमें क्या है, पृथ्वी का मुख्य गुण कौन सा है, पृथ्वी दाता है, देती है। एक चीज बो दो पृथ्वी में दाना, पूरा पेड़ निकल आता है, हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। तो जल मिलता है, सब्जी मिलती है, अनाज मिलता है, फल मिलता है, पृथ्वी हर चीज की दाता है।
ایسے ہم بھی بابا کہتا ہے تم داتا بن کر کے دیتے چلو. کوئی استھول چیز کی بات نہیں ہے, اس کی تو لمیٹیشن ہے, ہم دے سکیں نہ دے سکیں ہمارے پاس ہی نہیں ہوگی تو کہاں سے دیں گے. لیکن شبھ بھاونا, شبھ کامنا, سہیوگ, سنیہ, پریم, آدر, ستکار, جس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا, یہ سب اگر دیتے چلیں گے سب کو, اس کا مطلب پرتھوی کا گن ہم نے دھارن کر لیا تو پرتھوی کبھی بھی ہماری مرتیو کا کارن نہیں بن سکتی. جتنا بھی ارتھ کو ایکائے گا, بابا نے کہا ہے کہ میں بندھا ہوا ہوں بچوں کی رکشا کرنے کے لیے, اسی لیے سمے پر رائٹ ٹچنگ ہوگی اور ہمارے پیر ادھر ہی بڑھیں گے جہاں سیفٹی ہوگی, ہمیں سوچنا نہیں پڑے گا, آٹومیٹیکلی پیر ادھر بڑھیں گے. بہت سارے ادھارن ہمارے یگ میں ہیں کس طرح بابا نے بچوں کی اس طرح رکشا کی. ابھی سمے کے ابھاؤ میں بس دو تتوں کا اور بتا دیں, یہ پرتھوی کا ہے. وایو کا کیا مکھیا گن ہے, وایو کو کیسے متر بنائیں گے, وایو کا مکھیا گن ہے ہلکا رہنے کا. وایو ہلکی ہوتی ہے اس لیے اڑتی چلی جاتی ہے, ہر ایک چیز کو اوپر اٹھاتی ہے. وایو اوپر اٹھاتی ہے, پرتھوی ہر چیز کو نیچے لاتی ہے. دیکھو وپریت گن ہے لیکن کو ایگزٹینس ہے, سہ استتو ہے. وپریت گن والے بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں, جہاں جہاں پرتھوی ہے وہاں وہاں وایو ہے. تو اس کارن سے ہم بھی پریوار کے اندر, سمبندوں کے اندر گن وپریت بھی ہوں, الگ الگ سنسکاروں والے ویکتی ہوں لیکن سہ استتو, ان کے ساتھ مل کر کے ہمیں چلنا ہے. یہ سہ استتو کی بھاونا یہ پرکرتی ہمیں سکھاتی ہے. پرکرتی جیت بننے کے لیے ہمیں ایسا بننا ہوگا کہ بھن بھن الٹی سنسکار والے ویکتیوں کے ساتھ بھی رہ کر کے ہم چلتے رہے. اور اگنی, اگنی میں کیا گن ہوتا ہے, سوریہ اگنی کا پرتیک ہے. پرکرتی کے اندر سوریہ ہے نا, تو سوریہ میں اگنی میں مکھیہ گن کیا ہوتا ہے, اس میں جو چیز بھی ڈالو اس کا روپ پریورتن کر دیتی ہے. تو بابا نے بھی کہا ہے آپ بچوں میں بھی ایسی گیان اگنی ہو, یوگ اگنی ہو, جوالا روپ ہو, جوالا مکھی یوگ بابا کہتا ہے نا, تو جوالا مکھی یوگ اتنا ہو جو کسی بھی ویکتی کو ہم پریورتت کر سکے. بابا نے کہا روتا ہوا آئے آپ کے سمکھ آئے اور بس اس کا سوروپ پریورتن ہو جائے, روتا ہوا آئے ہستا ہوا چلا جائے, اشانت آتما آئے شانتی کی استھتی دھارن کر کے چلا جائے. یہ جوالا مکھی یوگ کا پرینام ہے. ایسی استھتی ہوگی تو یہ پرکرتی جیت ہم بھی بنتے جائیں گے. اور آکاش تتو میں کیا وشیشتا ہوتی ہے, آکاش وشال ہے, مہان ہے. تو آکاش تتو کی طرح اگر ہم نے ایسا گن دھارن کیا ہوگا وشالتا کا, جو بابا کہتا ہے رحم دل ہو, فراق دل ہو, بڑے دل والے ہوں, کسی کی کمی کمزوری بھی دیکھیں اس کو شمع کر دیں, معاف کر دیں. ہم نے دادیوں میں دیکھا, بابا میں دیکھا, بڑے بڑے ایسی بات ہوتی تھی لیکن لوگ آتے تھے بس غلطی بھی کرتے تھے, اس کو ساودھانی بھی دی لیکن پھر شمع کر دیا, اور وہ بات دل میں نہیں رکھنا یہ شمع ہے. شمع کرو اور شمع مانگ لو, جیت ہے اس میں ہار نہیں. شمع ویروں کا بھوشن ہے, کائر کا ویوہار نہیں. جو ویکتی کائر ہوگا وہ شمع نہیں کر پائے گا. اسی لیے آج اپنے اندر ہم دیکھیں اگر کوئی ویکتی نے غلط کام کیا ہے, ہمارے پرتی بہت نگیٹو ہے, ہمارے مارگ میں بادھا اٹکاتا ہے, کچھ بھی ہے, لیکن ہم اسے شمع کرتے ہیں. شمع کرنے کا بھاؤ کیا, اس کی بات کو بھول جائیں. اسی لیے کہیں فارگیو اینڈ فارگیٹ, فارگیٹ اینڈ فارگیو. اس کو بھول کر کے, ہر ویکتی میں دو شکتیاں تو ہوتی ہیں جب سے وہ پیدا ہوتا ہے, ایک یاد کرنے کی شکتی, ایک بھولنے کی شکتی, ہر ویکتی میں ہوتی ہے جب سے وہ پیدا ہوتا ہے. لیکن لائف کی ٹریجڈی کیا ہے کہ جو بات وہ یاد رکھنا چاہتا ہے وہ تو بھول جاتا ہے, اور جو بات بھول چلنی جانی چاہیے وہ برسوں تک یاد رکھتا ہے. इस बात को बस अब फिर रिवर्स ऑर्डर में ले आना है और किसी भी की भी कमी कमजोरी को दिल में नहीं रखना है, आकाश की तरह महान बन के उसे क्षमा करते रहना है। तो क्या होगा, अगर हमने ये शक्ति धारण कर ली तो आकाश मार्ग से जितनी भी आपदाएं आएंगी, बम गिरे, चाहे रॉकेट आए, चाहे वर्षा बहुत हो, बादल फटे, आकाश मार्ग से जो भी आपदा आएगी वो हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि आकाश का गुण हमने धारण कर लिया। आकाश जैसे महान विराट बन गए दिल में, जो बाबा कहता है फिराक दिली और रहम दिल। तो इस तरीके से ये पांच तत्वों पर अगर हमने इनके गुणों को धारण करके अपने से मैच कर लिया तो फिर क्या होगा, ये तत्व भी हमारे अधीन, प्रकृति जीत हम बन जाएंगे। और प्रकृति जीत जब होंगे ना, तो अंत में बाबा ने कहा है ना, माया जीत और जगत जीत, साथ ही साथ प्रकृति जीत, जैसा दादी को वरदान दिया। तो ये प्रकृति जीत बनना भी जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है। और इसके लिए ये क्या है, हम रोज अपने अंदर झांक करके देखें। होता क्या है ना, हमारी भारतीय संस्कृति ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है, कौन सा, जियो और जीने दो। बस हम क्या है, दुनिया को अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं, भाई हम बड़े हैं इसे मेरी बात माननी चाहिए, बात नहीं मानी उसने हमें क्रोध आ गया। सबको, अब सास बहू को, बाप बेटे को, बड़ा छोटे को अपने अनुरूप चलाना चाहता है, इसलिए जियो और जीने दो। उससे क्या होगा, दूसरे के मार्ग में अगर हम बाधा नहीं अटकाएंगे ना, तो बाबा ने ये महानता का लक्षण दिया। इसके लिए रोज हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, प्रतिदिन, वही बाबा कहता है योग है जिंदगी भर। बड़ा अच्छा कहा है किसने, जिंदगी भर हम एक ही भूल करते रहे, कौन सी भूल, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे, जो है आईने पर। प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, हमारे अंदर कमी कमजोरी होगी है, लेकिन हम दूसरे को समझते हैं, उसने ये कहा, उसने बात कही तो मुझे क्रोध आ गया, उसने ये किया तो मैंने ऐसा जवाब दिया, तो लेकिन नहीं, प्रॉब्लम हमें, हमारे साथ, हमें अपने को देखना है। दूसरे को हम नहीं बदल सकते, हम अपने को बदलते चले। और बदलने का सबसे बड़ा साधन कौन सा है, हा? बाबा ने जो बताया हमारे यहाँ, प्रेम। किसी से भी घृणा और ईर्ष्या न करें, कोई भी बात हो लेकिन हम उसे प्रेम का व्यवहार दें। बहुत अच्छे कवि होके गए हैं अमीर खुसरो, हा? उन्होंने एक बात इस पर कही है कि खुसरो, ये भगवान के उसमें, परमात्मा के उसमें ना, कैसे उनका ईश्वर के प्रति आदर था कि खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार, प्रेम के दरिया की धार उल्टी है। कैसे उल्टी है, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार, जो तैरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार, वो हो गया। भगवान के उसमें जिसने सोचा अरे अभी मेरी उम्र क्या है, ये तो करेंगे, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, जो तैरा वो तो डूब गया, दरिया में डूब गया यानी खत्म हो गया, और जो भगवान के प्रेम में लीन हो गया, जो डूबा वो पार। तो इस दुनिया से हम सबको भी ना, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, ये विषय सागर है, पार होना है, तो ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं, लेकिन हम सब भी जो लक्ष्य लेकर के आए हैं यहाँ पर, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो जीवन की मिनिमम जो ज्ञान है, योग है, बाबा ने सिखाया, हमारे सामने ब्रह्मा बाबा आदर्श थे, कैसे जिए, कैसे उन्होंने शरीर छोड़ा, प्रकृति जीत बन के शरीर छोड़ा, कैसे जिए, मन जीते जगत जीत बन के जिए। तो इसलिए मन जीते जगत जीत होते हुए हम चलेंगे, तो विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये समय संकल्प श्वास हमारे सारे सफल होते जाएंगे। ओम शांति,
ओम शांति।
सफल कर लो सांसें अपनी, कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना। पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को